ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन लीला से 8 शिक्षाएं ये चर्चा हमने प्रारंभ की, और पिछले रविवार और उससे पिछले कई रविवारों से हम इस शीर्षक पर चर्चा कर रहे हैं, हाउ टू सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस। विशेष रूप से इस लीला के संदर्भ में, जहां देवराज इंद्र गोवर्धन की सफलता को सहन नहीं कर पाए, गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन के उत्सव को मनाना तो दूर, गोवर्धन को विध्वंस करने के लिए देवराज इंद्र ने संवर तक बादलों को भेजा। तो हम समझ सकते हैं कि किस हद तक अभिमान जो है वो व्यक्ति को नीचे गिरा सकता है। उनको औधा मिला है देवराज का। देवराज का अर्थ है देवताओं के राजा। तो देवताओं के राजा भगवान के एक प्रतिनिधि हैं ये, और भगवान का जो सृष्टि का मैनेजमेंट है उसमें एक बहुत प्रमुख अभिनय निभा रहे हैं। तो भगवान की लीलाओं में योगदान करना तो दूर, यहां पर देवराज इंद्र अपने अभिमान के वजह से भगवान की लीला में बाधा, और कोई छोटी मोटी बाधा नहीं, जो प्रलय के बादल पूरी सृष्टि को विध्वंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें भेजा छोटे से वृंदावन ब्रजमंडल पर, और विशेष रूप से गोवर्धन। तो इसलिए सीखने योग्य बात यह है हम साधकों के लिए कि जब अभिमान हमारे आड़े आता है, हमारी साधना भक्ति में भगवान और भगवान के पार्षद, भगवान के प्रतिनिधि, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कोई उत्सव मनाते हैं, और एक प्रामाणिक भक्त जो है उसका हर एक कार्य उत्सव है, क्योंकि एक प्रामाणिक भक्त अपना हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। जैसे गोवर्धन, गोवर्धन इनका अर्थ क्या है, जो अपने स्वयं को भगवान और भगवान के पार्षदों की भक्ति की वृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं, वो है गोवर्धन। और इसलिए हर रोज जब भगवान गोवर्धन पर्वत के ऊपर अपने ग्वाल सखाओं के साथ, गौओं के साथ, बछड़ों के साथ लीला किया करते थे, तो गोवर्धन जो सेवा प्रदान करते थे घास के द्वारा, पूरे पर्वत के द्वारा, और पर्वत में जो कुछ उपलब्ध है भगवान के सेवा हेतु, वो हर एक क्रिया गोवर्धन पर्वत की अपने आप में हर दिन हर क्षण एक उत्सव। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि गोवर्धन पर्वत केवल जो हमारे कैलेंडर में गोवर्धन पूजा होती है कार्तिक के महीने में तभी कोई उत्सव होता था, नहीं, हर दिन उत्सव। क्योंकि एक तो प्रामाणिक भक्त गोवर्धन और दूसरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ उनके शुद्ध ब्रजवासी गण हैं, गौवे हैं और गोवर्धन जैसे प्रामाणिक भक्त हैं, तो वहां हर क्षण उत्सव होता है। यह है आध्यात्मिक संसार। आध्यात्मिक संसार अर्थात हर क्षण उत्सव। हर पग पर नृत्य है, हर शब्द कीर्तन है। यह है गोलोक वृंदावन। तो अब प्रश्न है कि हम इस भौतिक संसार में ये गोलोक वृंदावन का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं। तो योग्यताएं क्या चाहिए इस गोलोक वृंदावन के उत्सव रूपी अनुभव को अपने जीवन में लाने के लिए? सबसे पहले प्रामाणिकता, गोवर्धन पर्वत की तरह प्रामाणिकता। और यदि हमारे अंदर गोवर्धन पर्वत की तरह भगवान की सेवा करने की प्रामाणिकता है तो हर एक क्षण हमारा उत्सव हो जाएगा। तो इसलिए जो शीर्षक हमने लिया है कि कैसे हम अन्य प्रामाणिक भक्तों के उत्सव में अपना योगदान दें। अब होता क्या है कि हम जानते हैं हमारे अंदर बहुत कमतरता है, विशेष रूप से सिंसियरिटी, प्रामाणिकता का रेशियो यदि देखें तो बहुत उसमें खामियां हैं। हम जानते हैं कौन कौन से एरिया में खामियां हैं। परंतु जब हम ऐसे प्रामाणिक भक्त जैसे कि श्रील प्रभुपाद, तो ऐसे प्रामाणिक भक्त जो इस भौतिक संसार में भगवान के उत्सवों को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए आते हैं, जब हम उनके द्वारा आयोजित किए गए उत्सवों में योगदान देते हैं, तो उनकी कृपा से जो खामियां हमारी प्रामाणिकता में हैं वो दूर कर देते हैं। इवन दो वी माइट बी इनसफिशियंट इन अवर सिंसियरिटी, बट इफ वी कॉन्ट्रीब्यूट वॉट एवर लिटिल इन द सिंसियर एफर्ट ऑफ अ प्योर डिवोटी लाइक श्रील प्रभुपाद, देन बाय हिज मर्सी दोज इनसफिशियंसीज कैन बी रिमूव्ड। ये सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट। भक्ति में प्रगति करने का ये ओपन सीक्रेट है। गोलोक वृंदावन को 2014 में हमारे जीवन में अवतरित करने का ओपन सीक्रेट। चाहे हम कोई विद्यार्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, यहां तक कि कोई भी धर्म का हो, वो भी यदि योगदान देता है अपनी ओर से तो वो जुड़ जाता है इस उत्सव में। तो हमने ये मुद्दा लिया था कि शुद्ध प्रेम जो है या परिपूर्ण प्रेम की परिभाषा क्या है। भगवान श्री कृष्ण जो चाहते हैं उसे करना, भगवान श्री कृष्ण जो नहीं चाहते हैं उसे नहीं करना। और हमने उदाहरण लिया था हनुमान जी का, उनका मासूम शुद्ध प्रेम ये सिंदूर की कहानी से। उसके पश्चात परिपूर्णता शरणागति में, इसके भी दो मुद्दे, टू स्टार्ट डूइंग सर्टन थिंग्स फॉर कृष्णा व्हाट यू हैव नेवर डन बिफोर, टू स्टॉप डूइंग सर्टन थिंग्स व्हाट यू हैव ऑलवेज बीन डूइंग बिफोर। अर्थात ये जो दो मुद्दे हैं हमारे जीवन में, व्यक्तिगत रूप से हम यदि देखें, भगवान की भक्ति में लगने से पहले ये जो दो मुद्दे हरेक जीव बहुत ही कठोरता से पालन करता है स्वयं के लिए। और ये बद्ध जीव का के अभिमान का नमूना है। लोग अभिमान से कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, जो मुझे पसंद है, और मैं क्या नहीं करता हूं, जो मुझे ना पसंद है। तो ये बद्ध जीव के अभिमान का ज्वलंत प्रदर्शन है। और इस अभिमान को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक शरणागति कोसों मील दूर है। तो शरणागति में भगवान हमसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं, ये दो चीजें जिनके बलबूते पर हम जी रहे हैं इस भौतिक संसार में। मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूंगा, मुझे जो अच्छा नहीं लगता, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, नहीं करूंगा। इसलिए जनानिवास प्रभु उन्होंने अपने एक प्रवचन में कहा, 3 words which keep us in this material world, I like it। And 3 words मैं add करना चाहूंगा, 3 words which don't take us to the spiritual world। Sorry, 4 words, I don't like it। What I don't like? Krishna and Krishna consciousness। तो ये deadly combination है। I like it over here and I don't like it over there। तो इसलिए ये हमने शरणागति के दो मुद्दे लिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति में यदि हमें प्रगति करनी है तो शरणागति के द्वारा ही प्रगति हम कर सकते हैं। जैसे हमने ये एक मुद्दा हमारे एक क्लास में डिस्कस किया था, भक्ति चारु महाराज एक इनिशिएशन लेक्चर दे, तो उनको एक प्रश्न पूछा गया। ये भक्तिविदांत मैनर में इनिशिएशन सेरेमनी चल रहा था, तो वहां पर भक्ति चारु महाराज को ये प्रश्न पूछा गया कि हरे कृष्ण महामंत्र तो भगवान ने सबके लिए ला कर दिया, युग धर्म तो सबके लिए, तो फिर ये इस्कॉन में या गुरु के सामने आकर दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? और हरिनाम दीक्षा का अर्थ है अब आपको हरिनाम दे रहे हैं गुरु, हरे कृष्ण महामंत्र दे रहे हैं। तो यदि हरे कृष्ण महामंत्र सबके लिए खुले रूप से दिया गया है ओपनली, तो दीक्षा की क्या जरूरत है? तो भक्ति चारु महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया इसका। उन्होंने कहा कि हां, हरे कृष्ण महामंत्र तो हर कोई जाप कर सकता है, परंतु यदि आपको शरणागत भाव से जाप करना है तो गुरु की आवश्यकता है. इफ यू वॉन्ट टू सरेंडर देन यू नीड अ गुरु. तो यहां पर सरेंडर का अर्थ क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना. प्रणिपात, सेवा, ये सब जो मुद्दे हैं शरणागति के, गुरु के समक्ष जाकर प्रणिपात, नम्र, उनकी सेवा करना, तो ये सबसे होता क्या है? ऐसा नहीं कि गुरु, उनको जब सेवा मिलती है या वो देखते हैं कि देख कैसे झुका है मेरे सामने, उनको उसमें कोई प्रसन्नता नहीं मिलती. उनको प्रसन्नता किसमें मिलती है? कि उसके द्वारा ये भक्ति में प्रगति कर रहा है, अपने अभिमान को चूर चूर कर नम्र होकर. तो वो जो भक्ति की प्रगति देखते हैं उसके अंदर, क्योंकि भक्ति में प्रगति तभी हो पाएगी जब हमारा अभिमान पूर्ण रूप से शून्य हो जाएगा. तो इसलिए यदि हमें अन्य भक्तों की प्रगति में प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले विनम्रता, और ये मुद्दे उन्हीं के संदर्भ में. और फिर हमने कुछ उदाहरण लिए थे जिन्होंने अपने जीवन में पूर्ण शरणागति दिखाई. प्रभु श्री राम के सेवा हेतु सारे देवता वानर बने. मृगारी नारद मुनि के कहने पर धनुष बाण उसने तोड़ दिया, उसने वो शिकार का धंधा छोड़ दिया. नंद महाराज जब 7 वर्षीय अपने भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुने कि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए इंद्र पूजा के बदले, तुरंत उन्होंने वो उसको स्वीकृति दे दी. और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मतानुसार उन्होंने युद्ध किया. और कर्ण का उदाहरण हमने लिया कि वही रणभूमि पर कर्ण भगवान श्री कृष्ण के मत को नहीं स्वीकार करने के वजह से पराजित हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ. इसलिए पिछले रविवार की हमारी अंतिम स्लाइड थी, केवल शरणागति नहीं, केवल प्रेम नहीं, दोनों का मिश्रण चाहिए. क्यों दोनों का मिश्रण चाहिए? क्योंकि विशेष रूप से भारत में ज्यादातर आप देखोगे कि लोग ये कहते फिरते हैं कि भाई प्रेम है हमारे अंदर, भगवान के प्रति प्रेम है. पूछो शरणागति कितनी है, वो क्या है, वो कौन सी चिड़िया का नाम है? प्रेम है भाई, प्रेम है. सबसे बड़ी प्रेम सगाई, और क्या चाहिए? शरणागति नहीं, क्योंकि शरणागति में तपस्या है. तो यहां पर श्रील प्रभुपाद ने हमें सिद्धांत क्या स्थापित कर दिया है? लविंग सरेंडर. केवल शरणागति, उसमें क्या दिखता है कि उसमें कठोरता दिखती है, केवल शरणागति. तो मिश्रण है लविंग सरेंडर, और वो लविंग सरेंडर, प्रेममय शरणागति कि शुरुआत होती है जब हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाने की इच्छा रखते हैं. तो ये सब कनेक्टेड है. यदि हमें गोलोक वृंदावन धाम का अनुभव करना है तो प्रेममय शरणागति चाहिए. प्रेममय शरणागति यदि चाहिए तो हमारे जीवन में हमें हिम्मत रखनी है हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए. तो आज का सेशन हम प्रारंभ करेंगे। ये जो परिवर्तन है, चेंज, इस पर कुछ चर्चा करते हुए। और परिवर्तन और चेंज के संदर्भ में हमने दो श्लोक इस गोवर्धन लीला से लिए हैं, तो पहले हम ये दो श्लोक इनको गाएंगे। स्कंद दसवा अध्याय 24 श्लोक क्रमांक 32 और 33। तथा च व्यदधु सर्वं यथाह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्तयनम् तद्द्रव्येण गिरिद्विजान् उपरित्य बलिन् सम्यग् आद्रतायवसं गवाम् गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम् तथा च व्यदधु सर्वं यथाह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्तयनम् तद्द्रव्येण गिरिद्विजान् उपरित्य बलिन् सम्यग् आद्रतायवसं गवाम् गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम् तथा च व्यदधु सर्वं यथाह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्तयनम् तद्द्रव्येण गिरिद्विजान् उपरित्य बलिं सम्यग् आद्रतायवसं गवाम् गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम्। तथा इस तरह च और व्यदधु संपन्न किया सर्वम हर बात यथा जिस तरह आह बतलाया मधुसूदन। भगवान श्री कृष्ण ने वाचयित्वा ब्राह्मणों से वाचन कराया स्वस्ति अयनम शुभ मंत्र तत्द्रव्येण इंद्र यज्ञ के निमित्त एकत्र की गई सामग्री से गिरि पर्वत द्विजान तथा ब्राह्मणों को उपरित्य भेंट करके बलिन उपहार सम्यक सभी एक साथ आद्रता आदर पूर्वक यवसम घास गवाम गवों को गोधनानी सांडो गवों तथा बछड़ों को पुरस्कृत्य आगे करके गिरिम पर्वत की चक्रुहु की प्रदक्षिणम प्रदक्षिणा। तो ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज को जो प्रस्ताव रखे गोवर्धन पूजा किस प्रकार से करनी है क्यों करनी है, तो श्लोक दो हमने इसलिए लिए हैं कि नंद महाराज की सरलता देखिए। सबसे बड़े गोप सबसे वरिष्ठ अनुभव में साक्षात्कार में आयु में और 7 वर्षीय अपने बालक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव और मत के अनुसार तुरंत वो राजी हो गए गोवर्धन पूजा करने के लिए। तो यहां पर उनकी नम्रता दिख रही है इन 2 श्लोकों में, केवल उनकी नहीं सारे ब्रजवासियों की। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। तत्पश्चात ग्वाल समुदाय ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया। उन्होंने शुभ वैदिक मंत्रों का वाचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रहित सारी सामग्री को उपभोग में लाते हुए गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों को सादर भेंट दी। उन्होंने गवों को भी घास दिया। तत्पश्चात गवों सांडों तथा बछड़ों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की। तात्पर्य बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिए। वृंदावन वासी एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, यही उनके जीवन का सार समाहार था। भगवान के नित्य संगी होने के कारण न तो उन्हें इंद्र या किसी अनुष्ठान यज्ञ से कोई सरोकार था, न ही वे कृष्ण द्वारा कहे गए सांख्य दर्शन में रुचि रखते थे। वे तो कृष्ण से केवल प्रेम करते थे और प्रगाढ़ स्नेहवश ही उन्होंने जैसा कृष्ण द्वारा कहा गया वैसा ही किया। उनकी यह सरल प्रेम मानसिकता कोई संकीर्ण हृदयता या अज्ञान न थी, क्योंकि वे परम पूर्ण सत्य के प्रति अनुरक्त थे जो अपने में सारा ब्रह्मांड समाये हुए है। इस तरह वृंदावन वासियों ने निरंतर सभी सत्यों के आधारभूत सर्वोच्च अनिवार्य सत्य अर्थात स्वयं श्री कृष्ण का अनुभव किया, जो समस्त कारणों के कारण तथा इस जगत का पालन करने वाले हैं। वृंदावन वासी उन परब्रह्म को प्रेमा भक्ति से अभिभूत रहते थे, अतएव वे समस्त प्राणियों में परम भाग्यशाली परम बुद्धिमान तथा परम व्यावहारिक थे। ओम अज्ञान। वृंदावन वासी एकमात्र भगवान कृष्ण के भक्त थे, यही उनके जीवन का सार समाहार था। उन्हें इंद्र यज्ञ और उस अनुष्ठान से कोई सराकार नहीं था, और यहां तक कि भगवान ने जो सांख्य दर्शन नंद महाराज के सामने प्रस्तुत किया कि उसे समझाते हुए कि इंद्र यज्ञ की क्यों जरूरत नहीं है, तो नंद महाराज और अन्य ब्रजवासियों को उस सांख्य दर्शन में भी कोई सरोकार नहीं था। यहां तात्पर्य में लिखा गया है उनके लिए उनका स्नेह, उनका प्रेम, बस वही उनके जीवन का सार था। इसे कहते हैं भक्ति में भगवान के प्रति सरलता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे वैष्णवता का अर्थ क्या है, वैष्णवता अर्थात सरलता। तो जब तक हमारे जीवन में इस प्रकार की सरलता नहीं आएगी, और सरलता ये बहुत दुर्लभ गुण है आजकल कलयुग में, बहुत दुर्लभ है ये, क्योंकि अधिकांश आप देखिए सब जगह पर सरलता के ठीक विपरीत गुणों को प्रदर्शित किया जाता है और उसकी सराहना की जाती है। आप जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, लोग समझते हैं बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है। यदि उसकी पढ़ाई लिखाई जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखे उसके नाम के पश्चात, तो लगता है बहुत ऊंचा व्यक्ति है। यदि उसका रहन सहन, बातचीत, पहनावा जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जितनी उसकी लाइफस्टाइल कॉम्प्लिकेटेड हो, लोग कहते हैं कि हाँ इसका जीवन काफी इंटरेस्टिंग जीवन है। और किसी का जीवन एकदम सरल तरीके से जा रहा हो तो कहते हैं कि बड़ा बोर है, बोर। सिंप्लिसिटी इन कलयुग इज कंसिडर्ड बोरिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज कंसिडर्ड इंटरेस्टिंग। ये दुर्भाग्य है कलयुग का। तो इसलिए यहां पर हम उस मुद्दे को लेंगे अब कि नंद महाराज उन्होंने भगवान के कहने पर तुरंत गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। तो एक परिवर्तन यहां पर दिख रहा है, जो इतने वर्षों से इंद्र यज्ञ वो कर रहे हैं, सारे ब्रजवासी भगवान के कहने पर उन्होंने अपने जीवन में और जो कार्यशैली है उसमें परिवर्तन लाया। उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब हम हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो परिवर्तन हमारे आवर्तन को रोकेगा। आवर्तन क्या है? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसको कहते हैं आवर्तन, समस्मृति। इस आवर्तन को यदि हमें रोकना है तो भगवान श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार परिवर्तन। तो ये दो शब्द ध्यान में रखिए, आवर्तन, परिवर्तन। अब परिवर्तन जो है इस भौतिक संसार में हम भली भांति वाकिफ हैं परिवर्तन से, चेंज। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस भौतिक संसार के जो दो स्वरूप हैं उन दो स्वरूपों में से एक स्वरूप के विषय में जो कहा है वो इसी के संदर्भ में है, दुखालयम और अशाश्वतम। तो अशाश्वतम का अर्थ क्या है? परिवर्तनशील। तो सबसे पहले हम परिवर्तन दो प्रकार के हमारे जीवन में क्या होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इच्छा अनुसार परिवर्तन, अनिच्छा अनुसार परिवर्तन, वॉलंटरी इनवॉलंटरी। परिवर्तन तो हमारे जीवन में आना है, मानो या न मानो, विश्वास करो या अविश्वास करो, बिलीव इट और नॉट, देयर इज गोइंग टू बी चेंज इन आवर लाइफ्स, वॉलंटरली और इनवॉलंटरली। तो अब दोनों में अंतर क्या है कि जो इच्छा अनुसार परिवर्तन होता है, जब हम इच्छा के अनुसार परिवर्तन करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हम भगवान के योग माया के अधीन होते हैं। और अनिच्छा वो है महामाया। अब देखिए हमारा शरीर, शरीर इस शब्द शरीर का अर्थ क्या है? जो सरकता रहे। शरीर का अर्थ क्या है? सरकता रहे। सरकने का अर्थ क्या है? जैसे भागवतम में होते ना, कई भक्त बोलते हैं चलो आगे सरको, है ना, और भी भक्त आने वाले, आगे सरको। तो ये शरीर, शरीर का अर्थ है कि पैदा होते ही जो सरकना शुरू करता है, कहां किस दिशा में? मृत्यु की दिशा में जो सरकता है वो है शरीर। और हमें लग रहा होगा कि कितनी प्रगति हो रही है ना, हमारे शरीर में कितनी प्रगति हो रही है। बच्चा 2 महीने का, बच्चा अभी 1 साल का, 2 महीने से 1 साल तक सरक गया ना? टेक्निकल भाषा में क्या हुआ है? 1 साल तक सरक गया। फिर जब पहली वर्षगांठ बनाते हैं उसकी, हैप्पी बर्थडे, फर्स्ट हैप्पी बर्थडे, तो हुआ क्या कि अब और आगे सरक गया है वो, दूसरा साल और सरक गया, तीसरा साल और सरक गया। कहां? जैसे मान लो कि आप किसी पर्वत की चोटी पर बैठे हो और पर्वत की चोटी पर आपको कोई कहे थोड़ा सरकते रहो, सरकते रहो, सरकते रहो, तो क्या उसको प्रगति बोलोगे? एक पॉइंट आने वाला है कि वहां से नीचे। तो वैसे ही ये जो शरीर है, पैदा होते ही प्रकृति क्या कह रही है? हां, उस पर्वत की चोटी पर बिठा दिया है जो चोटी दिखाई नहीं दे रही, खाई भी दिखाई नहीं दे रही नीचे, और प्रकृति कहती है चल बेटा सरक, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सरकता जा, सरकता जा, सरकता जा। और कई बार हमारी कुंडली हम निकाल लेते हैं तो ज्योतिषी कह देता है कि जो खाई है आपके जीवन में 80 साल दूर है। कितनी दूर है? 80 साल दूर है आपकी खाई। परंतु शरीर जो है वो सरकना बंद नहीं करता। तो बचपन से हमारे अंदर ये जो परिवर्तन प्रारंभ होता है, हमारे शरीर का परिवर्तन, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, हम ये कौन सी योनि में पैदा हुए, क्या रंग रूप लेकर पैदा हुए, कौन से समय पैदा हुए, कौन से परिवार में पैदा हुए, कौन से अस्पताल में, कोई हमने पहले से एप्लीकेशन डालकर चूज नहीं किया था, इसी अस्पताल में मुझे पैदा होना है, इसी समय पैदा होना है, ये बर्थ डेट मेरे को अच्छा लगता है, इसी टाइम मैं बाहर निकलूंगा, नहीं, हमारी इच्छा अनुसार नहीं हुआ। जो आगे फिर हम बढ़ने लगे वो भी हमारी इच्छा अनुसार नहीं, किस प्रकार से हम बढ़ रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन हमारे शरीर में बचपन से लेके मृत्यु तक, इसको कहते हैं आवर्तन। और फिर यदि हम मुक्ति प्राप्त नहीं करते तो फिर से शुरू हो जाते, वो श्रृंखला फिर से शुरू। बहुत साल पहले हम प्रचार के लिए गए थे इटली, तो रोम में एक क्रिश्चियन जो धर्म है उन्होंने उनके कैथीड्रल में बेसमेंट में एक बहुत ही विचित्र प्रकार की प्रदर्शनी बना रखी थी। क्यों विचित्र प्रदर्शनी? कि वो कैथीड्रल के जितने पादरी इतने सालों से जो जिए और मरे, तो उनकी हड्डियों की एक प्रदर्शनी थी, मरे हुए पादरियों की हड्डियों की प्रदर्शनी। और वो एग्जीबिशन इस प्रकार का था कि जैसे झांकियां बनाते हैं अलग भगवान, जैसे आप देखो गणेश उत्सव में झांकियां बनाते हैं गणपति के बगल में, तो वैसे उन्होंने झांकियां पूरी बना रखी है। लेकिन झांकियां किसकी बनी हुई हैं? सब हड्डियों की, कंकाल जो होता है ना पूरा उसका बना हुआ है। तो बहुत देखने में भयाव, ऊपर नीचे सब जगह हड्डियां ही हड्डियां, अलग अलग प्रकार के शरीर के अंगों की हड्डियां, और बीच में सब जगह पर ऐसे पूरा कमरा हड्डियों से भरा हुआ है, और बहुत बड़ा अपने टेम्पल हॉल से भी बड़ा, सब हड्डियों से, दीवारें हड्डियों की, ऊपर सीलिंग हड्डियां, नीचे फ्लोर हड्डियों का, और सामने ऐसे जैसे अल्टर जैसा बनाया उन्होंने, वो भी हड्डियों का बना हुआ अल्टर, और उस अल्टर में एक सिंहासन बनाया हुआ है, हड्डियों का सिंहासन, और उस हड्डियों के सिंहासन के ऊपर एक स्केलेटन बैठा हुआ है। और इसको देखने के लिए बहुत लोग वहां पर जाते हैं। तो जो एग्जीबिशन एक एक कर कर आप वो अलग अलग जो उन्होंने हड्डियों का डेकोरेशन किया है, वो देखते हुए जब लास्ट के एग्जीबिशन एग्जीबिट पर पहुंचते हैं, तो वहां पर उनका एक साइन, एक प्लाक है, प्लाक पर लिखा हुआ है। तो प्लाक पर क्या लिखा हुआ है? मानो वो जो स्केलेटन उस हड्डियों के सिंहासन पर बैठा है वो बोल रहा है, जो देखने आ रहे हैं ना उनको बोल रहा है, उसका स्टेटमेंट है वो। तो क्या बोल रहा है? व्हाट यू आर नाउ आई यूज्ड टू बी, जो तुम अभी पूरा अपने कंकाल के ऊपर मांस चढ़ाए हुए घूम रहे हो ना, मैं भी एक दिन था तुम्हारी तरह, एंड व्हाट आई एम नाउ सून यू शैल बी। ये सच्चाई है। तो ये है आवर्तन, और इसके अंदर जो महामाया के अधीन परिवर्तन होता है। तो जब हम स्वेच्छा से परिवर्तित करते हैं हमारे जीवन को, तो स्वेच्छा से जो परिवर्तन हम लाते हैं हमारे अंदर, उसमें संतुष्टि मिलती है। जैसे ये घटना हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के ब्रह्मचारी के साथ हुई। प्रचार के लिए वो जा रहे थे मुंबई में, तो सिग्नल रोड क्रॉस कर रहे थे, सिग्नल लगा हुआ था। तो वो पूरे सैफ्रॉन ड्रेस में प्रचार करने के लिए तिलक वगैरह लगाए हुए, शेवन हेडेड वो क्रॉस कर रहे हैं, तो तभी सिग्नल ग्रीन हो गया और वो गाड़ी जो है वो निकलने की कोशिश करे, परंतु अब ये ब्रह्मचारी सामने आ गए तो गाड़ी वाला जोर से अंदर से चिल्लाए, ए टकले। और हुआ क्या है कि ये ब्रह्मचारी के पीछे एक और शख्स, वो भी ट्राई कर रहा था क्रॉस करना और वो भी गंजा था। तो हमारे ब्रह्मचारी, उनको बिल्कुल भी कोई अपमानित नहीं लगा, वो उसको हरे कृष्णा बोलकर वो चलेगा। लेकिन जो पीछे वाला, उसको जब ये सुनाई दिया कि इस व्यक्ति ने गाड़ी से टकले बुलाया, तो वहीं पर उसने उस गाड़ी वाले के पूरे खानदान का मुंडन किया बिना उस्तरे के। तो ये ब्रह्मचारी बता रहे थे इनका साक्षात्कार कि क्या दोनों में अंतर, क्या दोनों में अंतर ये था कि वो ब्रह्मचारी, उन्होंने स्वेच्छा से अपना मुंडन करवाया था, वॉलंटरली ही हैड शेवन हिज हेड, इसलिए उसमें उनको संतुष्टि थी। लेकिन जो पीछे वाला, वो जबरदस्ती गंजा करवाया गया था प्रकृति द्वारा। तो ये अंतर है, दोनों में परिवर्तन है, दोनों का सेवन हेड है, परंतु एक जो स्वेच्छा से अपने केश अर्पित करते हैं, क्यों, उसके अंदर क्या दिख रहा है। अब देखो, कई लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं, वहां पर भी वो मुंडन कराते हैं, है ना, तो वो सीना ठोक कर घूमते हैं कि हम तिरुपति बालाजी जाकर केश देकर आए। क्यों, क्योंकि उनको पता है अपनी खेती है, एक महीने में उगने वाली है, तो उनको पता है कि वो रूट्स वगैरह सब हैं, उग जाएंगे, अच्छा खाद यूरिया डालो। लेकिन प्रकृति जिसके केश जड़ से उखाड़ लेती है, अब कितना भी यूरिया डालो कुछ नहीं उगने वाला, बंजर भूमि है अब, तब ठेस पहुंचती है। तो वैसे ही ये एक छोटा सा उदाहरण हमने प्रस्तुत किया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में बड़ी बड़ी चीजें, जब हम स्वेच्छा से कोई कुछ अर्पित करते हैं, तो स्वेच्छा से दिया गया दान, हालांकि दान का अर्थ है स्वेच्छा से दिया गया, तो उसमें संतुष्टि, परंतु छीन लिया गया। जैसे कोई व्यक्ति भगवान को आकर कुछ दान करता है, तो उसके अंदर उसको संतुष्टि मिलती कि हाँ, मैं अपनी ओर से वो चेष्टा कर भगवान को कुछ दान किया, और वही रकम उसकी जबरदस्ती कोई चोर चोरी कर ले जाता, तो फिर वो ये नहीं सोचता है, चलो चोरों को मेरी तरफ से दान, नहीं, हर समय वो बात चुभती है। क्यों? अब एक ही बात है कि वो धन गया, अपने हाथ से गया, तो फिजिकली धन नहीं है, लेकिन एक बात में संतुष्टि क्यों मिलती है और दूसरे में वो बात चुभती क्यों है? क्योंकि मेरे अनुसार नहीं हुआ, वो अभिमान बीच में आता है, मेरे अनुसार नहीं हुआ। जैसे कि एक भिखारी एक घर में भीख मांगने जाता है, तो बेचारा कुछ आकांक्षा रख रहा था कि कुछ मिलेगा इस घर में, बड़ा सारा बंगला दिख रहा है, बहुत सारे सदस्य दिख रहे हैं घूमते फिरते। तो जो बहू वो आई दरवाजे पर और उसने भिखारी को कहा, दफा हो यहां से, भिख मंगा, दुत्कार कर भगा दिया। बेचारा भिखारी जो अपेक्षा लेकर आया था, ठीक विपरीत उसका हुआ। कटोरा लेकर लौट रहा था वापस, तो जो उस बंगले का बड़ा गेट था, बंगले के गेट पर एक महिला वो एंट्री कर रही जी, कौन है भाई? तो उसको लगा अभी अंदर से इतनी डांट फटकार मिली है यहां गेट पर, ये तो और ज्यादा भारी भरकम लग रही है ये महिला। तो उसने कहा कि गलती हो गई, मैं मेरे को लगा कुछ मिलेगी, भिक्षा मिलेगी यहाँ पे, क्या हुआ? नहीं नहीं वो अंदर मेरे को उसने बोल दिया, दफा हो यहाँ से, उस औरत ने। उसने कहा वो जो वहां पर खड़ी है बरामदे में, उसने कहा? हाँ। उसकी हिम्मत अंदर आ, तो उसको लगा अच्छा चलो भाई कुछ आसार है मिलने के। तो भिखारी को अंदर बुलाया, अंदर बुला के फिर वो बरामदे में खड़ी हुई, बरामदे में खड़ी होके बोलती, दफा हो यहां से भिख मंगे। उन्होंने कहा क्या चल क्या रहा है ये? मतलब वो वही बात आप भी बोल रहे हो, उसने भी बोली, उसकी हिम्मत, वो मेरी बहू है, मैं सास हूं यहां की, मैं बोल सकती हूं दफा हो यहां से। ये अधिकार मुझे बोलने का। तो अभिमान इतना सूक्ष्म होता है, इतना गहरा होता है कि हाँ मुझसे हुआ है, ये मेरी इच्छा के अनुसार हुआ, इसलिए उसके अंदर हमको। लेकिन भगवान के लिए जब हम भगवान के इच्छा अनुसार अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो वो जो योगमाया द्वारा दी गई संतुष्टि है वो हम प्राप्त करते हैं। तो परिवर्तन तो हमारे जीवन में आना ही है। अब हमें ये बात समझ लेनी है कि क्या मैं वो परिवर्तन भगवान के इच्छा अनुसार मेरे से जबरदस्ती करवाया गया, उससे पहले मैं स्वेच्छा से दंडवत कर लूं। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे, आइदर यू फॉल फ्लैट, पे योर ओबेसेंसेस वॉलंटरली, अदरवाइज टाइम विल मेक यू फ्लैट वन डे। तो इसलिए शुरुआत यहां से है परिवर्तन की। अब जब हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखें, तो तीन प्रकार से हमारे जो परिवर्तन है, विशेष रूप से साधना भक्ति में, ये अपेक्षित होते हैं। लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली। जब हम भक्ति में आते हैं, तो भक्ति में आने के पश्चात हमारी जीवन शैली के अंदर परिवर्तन आता है। कैसा परिवर्तन? जीवन शैली में कैसा परिवर्तन आता है? पहले जो हम 10 बजे उठा करते थे, एक जीवन शैली होती ना, 10 बजे उठने की जीवन शैली। तो जो 10 बजे हम उठा करते थे, अब भक्ति में आने के बाद उसके अंदर परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? अब 10 मिनट पहले उठते हैं। शुरुआत वहां से होती है। पौने 10, 9:30 ऐसे धीरे धीरे। फिर एक ऐसा भी दिन आता है जब हम बिना अलार्म के सुबह 4 बजे उठते हैं। कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार की जीवन शैली भी हम जी पाएंगे, जहां हम सुबह 4 बजे, जिसको हम रात कहा करते थे, एक वो भी दिन था जब 4 बजे को हम रात कहते थे, अब हम कहते हैं सुबह 4 बजे। परिवर्तन है। तो जीवन शैली में और क्या परिवर्तन आता है भक्ति में आने के पश्चात? पहनावा। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम इस प्रकार का पहनावा भी पहन पाएंगे। तिलक, हमने इसकी चर्चा की थी पिछली बार, तिलक, कंठी माला, धोती, साड़ी इत्यादि, ये सब पहनना, पहनावा। और खाना पीना, उसके अंदर परिवर्तन। तो ये सब मोटी मोटी चीजें हमारे जीवन में, जीवन शैली के अंदर परिवर्तन। फिर आदतें। अब ये देखिए, ये स्टैंडर्ड जो भी भक्ति में आते हैं, स्टैंडर्ड ये सब कुछ हम करते हैं। अब आदतें जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से हमें परिवर्तित करनी है। तो वो और थोड़ा पर्सनल हो गया अभी, हैबिट्स। लाइफस्टाइल थोड़ा ब्रॉड कैटेगरी हो गया। जय श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की, श्री गौर निताय की। तो आदतें जो हैं उसके अंदर हमको व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन लाना पड़ता है। और फिर और सूक्ष्म स्तर पर है व्यू पॉइंट्स, दृष्टिकोण। वही भक्ति को कैसे किया जाए, हर एक भक्त के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। कि जन्माष्टमी में भगवान की जन्माष्टमी कैसे मनानी चाहिए। हम लोग मीटिंग में अनुभव करते हैं, सभी एक ही गुरु महाराज के शिष्य हैं, एक ही दिन दीक्षा हुई है, एक ही प्रसाद खा रहे हैं, एक ही पानी पी रहे हैं, एक ही भगवान के मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, एक ही महामंत्र जप कर रहे हैं। परंतु एक कहता है मेरे अनुसार जन्माष्टमी ऐसे मनानी चाहिए, दूसरा कहता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों बिल्कुल नहीं? क्योंकि मेरे अनुसार ऐसी मनानी चाहिए। तीसरा कहता है दोनों बेवकूफ। तो ये जो हम साधना भक्ति में और सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं परिवर्तन के, जो हमारे दृष्टिकोण, तो इसलिए इसमें यदि हम इसको कुछ श्रेणियां दें, लाइफस्टाइल चेंज इज डिफिकल्ट, चेंज ऑफ हैबिट्स इज मोर डिफिकल्ट, चेंज ऑफ व्यू पॉइंट्स इज मोस्ट डिफिकल्ट। क्यों? क्यों दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना सबसे कठिन है? क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे अभिमान से। तो घुमा फिरा के हम जा कहां रहे हैं, फिर से उस अभिमान को पंचिंग बैग बनाया हमने। तो मोस्ट डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि हां, जहां तक हैबिट्स और लाइफस्टाइल, उसके अंदर इतना अभिमान को ठेस नहीं पहुंचती। कई बार हमको लगता है ठीक है, ये सुबह जल्दी उठना, उसमें बढ़ जाता है कई बार अभिमान हमारा। चार बजे उठता हूं आजकल मैं, तो सीना ठोक कर हम बोलते हैं कि चार बजे उठता हूं, कांदा लहसुन नहीं खाता, बिल्कुल नहीं। लोग देखते हैं, अच्छा कांदा लहसुन सामने रखा है, फिर भी देखूंगा भी नहीं, रख दो सामने, देखूंगा भी नहीं, चखना तो दूर की बात है। अच्छा पहले जो केवल वही कांदा कांदा खाता था, अभी देखता भी नहीं, बड़ा कड़क हो गया। टीवी चल रहा है, देखूंगा नहीं, चला दो, कौन से भी प्रोग्राम चला दो, कौन सा भी चैनल चला दो, देखूंगा नहीं। क्रिकेट मैच चला दो, इंडिया पाकिस्तान, देखूंगा नहीं, चाहे इंडिया हार जाए चाहे जीत जाए, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके अंदर, हाँ जब दूसरे देखते हैं कि इसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया। कई बार कई भक्तों के विषय में लोग आके कहते हैं कि अगर ये हरे कृष्ण का भक्त बन गया, दम है भाई, दम है, हरे कृष्ण में दम है। क्योंकि वो उसको जानता था पहले से, पूरा अंदर बाहर उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी जानता था कि ये मंगल आरती के लिए आता है, ये चार नियम का पालन करता है, हाथ में कुछ और उठाने के बदले माला उठा रहा है, ये मान गए भाई। तो वो सब आसान है, परंतु मत, हमारा दृष्टिकोण, वो डिफिकल्ट होता। क्या है कि हमको लगता है कि हमारी भक्ति की प्रगति बस लाइफस्टाइल बदल दूं, आदतें बदल दूं, और क्या, बस अब तो वैकुंठ विमान रास्ते में है, आ रहा है। तो हाँ, ये सब बहुत मेजर चीजें, बदलाव हमारे अंदर हम तुरंत देखते हैं, परंतु हाथी निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है ना। और वो पूंछ क्या है? ये हमारा दृष्टिकोण। और वो कौन सी पूंछ हाथी की? जिस पर गांठ मारी हुई है। और कई बार हमारे अलग अलग दृष्टिकोण क्या होते हैं, एक गांठ नहीं, बहुत सारी गांठ, बहुत सारी ग्रंथियां, तो सुई टेढ़ी हो जाएगी परंतु वो गांठ नहीं खुलेगी, वो हाथी की पूंछ निकलना तो दूर। तो ये जो दृष्टिकोण है, हम इसके विषय में और गहराई में जाएं तो इसके तीन मुद्दे हैं, हमारा व्यू पॉइंट, हमारा मत, जिसको पैदा करता है हमारा अभिमान। कौन है पिता इसका? अभिमान, बिना माता के पैदा करता ही है। तो मत को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? मेरे अनुसार, मेरा दृष्टिकोण, क्यों? क्योंकि मेरा है। तो उसके अंदर वो शक्ति कहां से मिल रही है कि वो मत इतना शक्तिशाली बन रहा है? क्योंकि मेरा है, जो कुछ मेरा है शक्तिशाली होना ही चाहिए, चाहे वो मेरा मत हो चाहे कुछ भी हो, शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं इसलिए। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण होता क्या है, अब देखिए हम जैसे अपने शरीर के साथ अपने जीवन शैली अपने आदतों के साथ सरकते हैं, मतलब बढ़ते हैं, तो हमारे मत को बहुत लोग सुनते हैं। बचपन में कोई नहीं सुनता बच्चों के, बच्चे बोलते रहे पापा मम्मी मेरे को बाहर जाना है खेलने के लिए, मेरे अनुसार अच्छा समय खेलने का ये, चुप बैठ यहां पे, कोई उसके ज्यादा सुनता नहीं। लेकिन बड़ा होने के बाद अब होता क्या है कि उसने कुछ शिक्षा अर्जित कर ली है, काबिलियत उसके अंदर आ गई है, कॉम्पिटेंस आ गया है, अब कुछ औधा है उसका, तो अब जब वो कुछ प्रस्ताव रखता है सामने घर में परिवार में तो सब सुनते हैं, बड़ा हो गया अभी वोटिंग एज का आ गया इसका, तो मत देने हा? उसको भी मत बोलते हैं ना, मतदान मतदान देने योग्य उम्र हो गई है। तो जब दूसरा लेवल आता है उसमें ये जो दृष्टिकोण हमारा मत प्रस्तुत करने की वृत्ति हमारी, क्यों उसमें और शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि उस व्यक्ति का मत कभी जो रिजेक्ट नहीं हुआ है वो व्यक्ति जब उसका मत रिजेक्ट होता है तो सबसे ज्यादा ठेस पहुंचती है उसको। जैसे कि हमने वो छोटी सी कथा ली थी वो भिखारी की, अब भिखारी होता है वो कितनी दफा उसको दुत्कार कर भगा दिया जाए, भाग यहां से भिख मांगा, तो उसको वो आदि हो गया उसके, किसके रिजेक्शन के आदि हो गया। परंतु वो व्यक्ति चाहे वो भिखारी भी क्यों ना हो कभी रिजेक्ट नहीं हुआ हो, ठेस पहुंचती है, रिजेक्ट किया मुझे। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं और एक हमारे मित्र बॉम्बे सेंट्रल का जो मेन सिग्नल है वहां पर टैक्सी में थे हम, तो एक भिखारी आया, तो जो हमारे मित्र थे वो उस खिड़की पर बैठे थे जहां भिखारी आया, उसने कहा छुट्टे नहीं है, और इस तरीके से कहा उसको छुट्टे नहीं है। तो भिखारी ने अपना कटोरा आगे किया था तो उसने कहा छुट्टे नहीं है, तो भिखारी ने उसके कटोरे में थोड़े छुट्टे थे ले। मैंने कहा क्या स्टैंडर्ड है इसका। तो भिखारी के मत अनुसार तेरे पास छुट्टे नहीं है मेरे पास है ले। तो हो सकता है उसको किसी ने रिजेक्ट नहीं किया हो। तो हमारा मत जब पूरे जीवन भर किसी ने रिजेक्ट नहीं किया या बहुत सालों 10 साल तक किसी ने अपना मत रिजेक्ट नहीं किया और फिर हो सकता है कि भक्ति में आने से पहले हम बहुत बड़े कहीं के बॉस रहे हों और जो भी बोला तुरंत हुआ, यस बॉस सब बोलते थे, भक्ति में आने के बाद सभी कहते हैं भैया नीचे दंडवत करो झुको नीचे, और हमने जो मत प्रस्तुत किया उसको रिजेक्ट किया गया, प्रहार, अभिमान के ऊपर प्रहार, वज्रपात, इंद्र के साथ क्या हुआ यही हुआ, आज दिन तक किसी ने इंद्र यज्ञ को नहीं रिजेक्ट किया। आज ये कौन है कल का छोकरा, इंद्र की यही भाषा थी, कल का छोकरा ये मेरा इंद्र यज्ञ रिजेक्ट कर रहा है, इसकी ये जरूरत, इसकी ये हिम्मत। तो ये है एक और सूक्ष्म स्तर किसका, मत, सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल सबसे हाईएस्ट प्रहार कब होता है, जब हमको ये कहा जाता है कि उसका मत स्वीकार कर तो भगवान ने गोवर्धन पूजा में पूरे कंप्लीटली इंद्र का अभिमान कैसे चूर चूर किया, पहले तो इंद्र उनका जो मत था उसको रिजेक्ट करवाया और फिर उसके बदले गोवर्धन पूजा इस मत को एक्सेप्ट करवाया। इसको बोलते हैं दो धारी तलवार, दोनों तरफ धार इस तलवार में दोनों तरफ से प्रहार हुआ इंद्र के अभिमान पे। तो हमारे भी साधना भक्ति में जब हम अपना मत लेकर घूमते फिरते हैं भक्त समुदाय में, ये मेरा मत है, सब जान लो ये मेरा मत है, मुझे पहचान लो, मेरे मत को पहचान लो, और जब वो रिजेक्ट हो जाता है तो ठेस पहुंचती, और वो व्यक्ति रिजेक्ट करता है जिसको कभी किसी ने कोई महत्ता दी नहीं हो, वो करता है रिजेक्ट। तो एक तो रिजेक्ट हुआ, हाँ मान लो हमारे गुरु हमारे मत को रिजेक्ट करते हैं तो हम उसमें भी थोड़ा गर्व मान, गुरु ने रिजेक्ट किया, किया तो भी किसने किया, गुरु ने रिजेक्ट किया, परंतु नया नया भक्त अभी आया उसने रिजेक्ट कर दिया, क्या प्रभु फालतू बात बोलते हैं, है? हमारे अनुसार सर्विंग काउंटर यहां होना चाहिए, 10 साल से दीक्षित हूं, ब्राह्मण दीक्षित हूं, और नया नया वो सर्विंग टीम में अभी अपॉइंट हुआ है, वो आके बोलता है प्रभु जी यहां पे क्या है, दिमाग है कि नहीं आपको, यहां पे लगा तो मतलब कल का वो मेरे को बोल रहा है कि, और हां उसने जो मत प्रस्तुत किया होगा उसी प्रकार का होगा जो बोला उसको, कि एकदम फालतू आपने वो सजेशन दिया यहां पे, और फिर किचन इंचार्ज आके कहता है कि हां ये जो बोल रहा है ना यहां पर ही सर्विंग काउंटर लगाओ, अब क्या हुआ इसका मत एक्सेप्ट किया जा रहा है, राम 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 राम, राम। अब जो मिर्ची लगती है ऐसी मिर्ची कभी नहीं लगी, एकदम झंझनाहट हो जाती है जलन अंदर कि एक तो मेरा मत रिजेक्ट किया गया और इस नौसिखिए का मत एक्सेप्ट किया गया, प्रभु बोल रहा है और बोलता है कि ये क्या आप बोल रहे हो, मुझे प्रभु बोलता है। तो अब इसमें हमारे तीन लेवल, इसके तीन लेवल, मेरा मत है डिफिकल्ट, वहां से डिफिकल्टी शुरू हो जाती, मेरा लग जाता है जब, कभी जो मत रिजेक्ट नहीं हुआ है वो जब रिजेक्ट होता है इट्स मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट समवन एल्सेस व्यू पॉइंट एक्सेप्टेड, not just accepted, you have to accept also, तुमको भी स्वीकार करना है उसका मत। तो ये most difficult level। तो इसलिए हमने इसकी पहली स्लाइड जो दिखाई lifestyle habits और व्यू पॉइंट, उसके अंदर जो सबसे मुश्किल क्या है व्यू पॉइंट के अंदर सबसे मुश्किल हमारे रिजेक्शन के बाद दूसरों का एक्सेप्टेंस, और गोवर्धन पूजा में यही हो रहा है, भगवान इतने अंदर डिटेल में जाकर इंद्र के अभिमान के अंदर हाथ डालकर टटोल टटोल कर उसको हिला हिला कर चिढ़ा रहे। कि इंद्र यज्ञ तो दूर की बात है, मैं 7 वर्षीय ग्वाला, मैं जो बोलूंगा ना ये लोग अभी वो पालन करेंगे, देख क्या करता है तू, कर ले क्या करना है, और वो भी नहीं, इंद्र ने वो भी चुनौती ले ली, ठीक है मैं दिखाता हूं, अब संवर्तक बादलों को बुलाया और भेजा विध्वंस कर दे, उस बालक को खत्म कर दे और उस बालक से संबंधित जो भी वो समुदाय है, गोप समुदाय, पूरे गोप समुदाय को खत्म कर दो, उस गोवर्धन पर्वत को विध्वंस कर दो। संवर्तक बादल को आदेश देकर भेजा और भगवान ने कहा कि ठीक है, अब तो मैं ऐसा पराक्रम दिखाऊंगा कि तेरा जो अभिमान तेरे ऐरावत से भी ज्यादा भारी है, उसको मैं कैसे चूर चूर करता हूं। तो भगवान कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में कहते हैं कि भगवान अन्य असुरों का वध करने के लिए जब तैयार होते थे ना, तो भगवान थोड़ी सी पूर्व तैयारी करते थे। क्या पूर्व तैयारी करते? जैसे कालिया, उस जगह जहां कालिया स्थित था यमुना में, भगवान ने जब छलांग लगाई कालिया को सुधारने के लिए, तो भगवान ने अपना कमरपट्टा कसा। जब भगवान कमरपट्टा पहनते ना, तो भगवान ने उस कमरपट्टे को कसा। तो भगवान ये दिखाए कि भाई कालिया में भी दम है, इसलिए मुझे थोड़ी पूर्व तैयारी कर कर जाना है। परंतु कवि कर्णपुर कहते हैं कि गोवर्धन उठाने के लिए भगवान जब निकले, तो भगवान ने कमर का पट्टा नहीं कसा, इंद्र को यह दिखाने के लिए कि तेरे लिए तो यह भी जरूरत नहीं मेरे को। इतना नगण्य है तुम कि तुम्हारे लिए तो मेरे को मेरे, और देखो यमुना में कूदना और गोवर्धन पर्वत उठाना, दोनों में किसमें ज्यादा शक्ति? गोवर्धन पर्वत उठाने में ज्यादा शक्ति। परंतु भगवान इंद्र को दिखा नहीं, बाएं हाथ की छोटी सी उंगली बस वो काम कर देगी। मैं अपना पूरा सर्वस्व तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं, वो अगर कर दूं तो नामो निशान मिट जाएगा तुम्हारा। खाली बाएं हाथ की छोटी सी उंगली उसने पूरा चूर चूर कर दिया अभिमान इंद्र का। तो यहां पर हम फिर से उस मुद्दे पर आते हैं, परिवर्तन। तो हमारे जीवन में यदि हमें योग माया में स्थित परिवर्तन लाना है आवर्तन को रोकने के लिए, तो जीवन शैली, आदतें और हमारा दृष्टिकोण। तो जीवन शैली होनी चाहिए गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, आदतें होनी चाहिए गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। इसलिए प्रभुपाद जब भी किसी व्यक्ति के साथ वाद विवाद में रहते, तो प्रभुपाद कभी नहीं कहते कि मेरे अनुसार ये है। प्रभुपाद कहते कृष्णा सेज इन गीता, द स्क्रिप्चर से सो। इसलिए कई क्रिश्चियन भी जब प्रभुपाद के पास आते थे, तो प्रभुपाद उनको ये कहते थे कि भाई आपके जो 10 कमांडमेंट्स हैं उसमें जो बताया गया है वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे आप, दाउ शल नॉट किल। प्रभुपाद उस मुद्दे को लेते कि तुम अपना दृष्टिकोण क्यों दे रहे हो, तुमको दृष्टिकोण दिया गया है तुम्हारे जीसस क्राइस्ट ने, फॉलो हिज व्यू पॉइंट, जस्ट लाइक आई एम फॉलोइंग कृष्णाज व्यू पॉइंट। इसलिए कोई भी जब किसी ऐसे गुरु बाबा के विषय में बोलने के लिए प्रभुपाद के पास आता, तो प्रभुपाद उस व्यक्ति के विषय में ज्यादा कुछ पूछते नहीं थे। कोई कहता कि ये जो जैसे एक कोई मेहर बाबा था, तो एक व्यक्ति कहा मेहर बाबा ऐसे मेहर बाबा कर रहा था, तो प्रभुपाद बोले टेल मी हिज फिलॉसफी। तो फिलॉसफी तो कुछ थी नहीं, तो प्रभुपाद ने अगला प्रश्न पूछा, हुम इज ही फॉलोइंग टेल मी दैट, हुम इज ही फॉलोइंग। जैसे भौतिक स्तर पर भी आप देखो, कोई व्यक्ति कहे कि मैं MBBS डॉक्टर हूं या MBA मैंने किया है, तो लोग पूछते हैं ना कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। तो वो यदि कहे कि यूनिवर्सिटी मेरी घर की, हमारे घर की यूनिवर्सिटी, घर घुती MBA फाइनेंस किया मैं, तो उसको क्या मायना दिया जाएगा। जा भाई घर में घुस फिर जाके, बैठ जा वहां जाके। लेकिन जब कोई कहता है कि हाँ मैं हार्वर्ड से मैंने किया है, MIT से मैंने, IIT से किया है, ऐसा जब बोलते हैं, अच्छा IIT से इंजीनियरिंग किया है, तो IIT का इंजीनियर क्यों उसको इतना श्रेय मिलता है? क्योंकि IIT के मत अनुसार तू क्वालिफाइड है। किसके मत अनुसार? IIT के मत अनुसार तू क्वालिफाइड है, तेरा कुछ नहीं, IIT के मत अनुसार। तो वैसे ही प्रभुपाद भगवत गीता, हर समय भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण उनके मत अनुसार, इसलिए भगवत गीता एज इट इज, मेरा मत नहीं, तुम्हारा मत नहीं, भगवान का मत, एज इट इज समझो यथारूप। तो ये है परिवर्तन के अलग अलग स्तर हमारे जीवन में। अब यहां पर देखिए, इसके विषय में मैं गौर कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण की नम्रता देखिए। महाभारत के युद्ध के दो प्रसंग, युद्ध से पहले अर्जुन विलाप कर रहे हैं कि मैं क्यों इनको मारूं, इतने योद्धा एकत्रित हुए हैं, मेरे द्वारा मारे जाएंगे, अर्जुन का विषाद। भगवद गीता सुनने से पहले, युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन का विलाप, अर्जुन का विषाद, इतना खून खराबा क्यों? और युद्ध के पश्चात किसने विलाप किया? युधिष्ठिर महाराज ने, और उनका भी विलाप क्या था? इतना खून खराबा क्यों हुआ? युद्ध से पहले अर्जुन का विलाप क्या था? इतना खून खराबा क्यों करूं? युधिष्ठिर महाराज का विलाप था, इतना खून खराबा क्यों हुआ? केवल मुझे राजगद्दी पर बिठाने के लिए? तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण की नम्रता देखिए। युधिष्ठिर महाराज युद्ध के पश्चात जब देखते हैं बिखरे हुए कटे हुए शरीर, इतने योद्धा, इतना खून, नदियां बह गई खूनों की, तो युधिष्ठिर महाराज को लगा कि नहीं, वो दृश्य आप कल्पना कीजिए, क्या दृश्य वो युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मराज देख रहे हैं कि केवल मुझे राजगद्दी पर बिठाने के लिए इतना खून खराबा, इतनी हिंसा। तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, समझाइए मुझे। तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं, एक भाई को तो युद्ध से पहले गीता सुनाई, अब इसको युद्ध के बाद गीता सुनानी पड़ेगी। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को समझाने प्रारंभ किया। अब देखिए, मैं यहां पर भगवान की नम्रता प्रस्तुत कर रहा हूं हमारे आप लोगों के सामने, कि कई बार क्या होता है, जब हम थोड़े भक्ति में प्रगति कर बड़े प्रचारक बन जाते हैं ना, हमको मतलब लोग कहते हैं कि हाँ बड़ा प्रचारक, हम भी मानने लगते हैं, लोग बोलते बड़ा प्रचार पहुंचा हुआ प्रचारक है। और जब कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ प्रचारक उसको कोई प्रश्न पूछता है कि प्रभु जी मेरे को ये शंका है, ये शंका दूर कीजिए, और वो फिर माइक्रोफोन एडजस्ट कर कर मैं करता हूं दूर बैठ तू, और वो अलग अलग शास्त्र कोट कर कर ये मंत्र वो मंत्र ये शास्त्र ये उदाहरण ये कहानी पूरा उसको एकदम लोडेड आंसर देता है, और वो बाद में माइक्रोफोन लेकर कहता है नहीं निवारण नहीं हुआ है। प्रचारक मैंने कहा निवारण नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे नहीं हुआ भाई। तो सोचिए भगवान से बड़े प्रचारक कौन हो सकते हैं। और युधिष्ठिर महाराज को जब भगवान ने उनकी शंका का निवारण दिया, युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं, युधिष्ठिर महाराज भगवान को कह रहे आई एम नॉट सैटिस्फाइड विथ योर आंसर। भगवान को कह दिया युधिष्ठिर महाराज। तो भगवान ने क्या किया, भगवान युधिष्ठिर महाराज को कहे मैं जानता हूं कि तुम्हें संतुष्ट, तुम्हारे शंका का निवारण एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो है भीष्म पितामह। अब देखिए ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी, क्योंकि भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा प्रचारक है वो शंका का निवारण नहीं कर पा रहा, वो यदि ये कहे कि उसके पास जाओ वो तुम्हारे शंका का निवारण करेगा, और वो भी कौन है, जूनियर, उस प्रचारक का जूनियर है। दिस इज द ह्यूमिलिटी विच कृष्ण एग्जिबिटेड। कृष्ण केवल ये नहीं कहे कि ठीक है नहीं हुआ ना मेरे से शंका का निवारण, चलो और कहीं चले जाना, नहीं उन्होंने कहा भीष्म पितामह करेंगे तुम्हारे शंका का निवारण, और इतना ही नहीं मैं तुम्हें ले चलता हूं उनके पास। और भगवान वहां खड़े रहे जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उनके शंका का निवारण किया, भगवान वहां पर खड़े रहकर सुन रहे हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनसे सारे शास्त्र आते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनसे सारे जीव उद्भूत हुए हैं, जिनको सबने बुद्धि दी है, भीष्म पितामह जिनके भक्त हैं जिनके पार्षद हैं, वो भगवान वहां पर एक दर्शक के रूप में खड़े होकर श्रवण कर रहे हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज के शंका का निवारण कैसे कर रहे हैं। इसे कहते हैं विनम्रता। और भगवान ये देखने नहीं आए कि कैसे भीष्म पिता भी इनके शंका का निवारण नहीं करते, मैं आके देखता हूं, नहीं, भीष्म पितामह ने शंका का निवारण किया, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हां अब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया आपके जवाब से। तो वही भगवान युधिष्ठिर महाराज को ये नहीं कहेगा अरे अर्जुन को मैंने अभी युद्ध के पहले 18 दिन पहले उसको भगवत गीता सुनाई, वो तो मान गया करिष्ये वचनम तब बोला उसने, और तुम बोल रहे हो कि शंका का निवारण नहीं हो रहा है, हिम्मत तुम्हारी, हाँ तुम्हारा भाई सीखो जाके उससे। ऐसा नहीं किया भगवान। अब देखिए इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, इस प्रकार की नम्रता। क्यों हम बोल रहे हैं हिम्मत चाहिए, क्योंकि कलयुग में ये जो लोग दृष्टिकोण, वो आजकल वो न्यूज चैनल, मैं हाल ही में एयरपोर्ट पे था तो मैं वो न्यूज चैनल चल रहा था टीवी पर, तो न्यूज चैनल में आते ना सब लोग अपना अपना वो छोटे छोटे उनके चेहरे दिखाते हैं एक साथ, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप डिस्कशन, डिस्कशन नहीं हो रहा था वो ग्रुप फाइट, चिल्ला चिल्ला के। तो उसमें क्या दिख रहा था कि वो चारों वो बोल रहा है आप चुप रहिए जो आप बोल रहे हैं बकवास है, और बोल रहा है आपकी हिम्मत, आप मुझे बकवास बोल रहे हो, आपकी औकात क्या है, वहां पे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। और वो जो क्या एंकर उसको बोलते हैं, वो जो वो जो एंकर है वो बीच में, नहीं 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 ये जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, आप लोग दोनों चुप रहिए, मुझे सुनिए पहले, अभी मैं जो बोल रहा हूं। तो वो मैं देख रहा था उसमें क्या चल रहा था, मेरा मत, मेरे अनुसार पॉलिटिक्स में ये होना चाहिए, मेरे अनुसार प्रधानमंत्री ये बनना चाहिए, मेरे अनुसार बाकी कोई नहीं, मैं ही बनना चाहिए प्रधानमंत्री, बाकी सबको साइड में रखो, मैं हूं ना यहां पे। तो कलयुग में ये मेरा दृष्टिकोण, मेरा मत, इसको कितना ज्यादा सराहा जाता है और कितनी ठेस पहुंचती है जब वो ठुकराया जाता है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने उदाहरण से युधिष्ठिर महाराज को स्वयं ले जा रहे हैं भीष्म पितामह के पास और कह रहे हैं कि इनसे सुनो, ये तुम्हारे शंका का निवारण करेंगे। भगवान दिखा रहे हैं अपने उदाहरण से कि परिवर्तन, लविंग सरेंडर, याद है हमारी स्लाइड, लविंग सरेंडर यदि हमारे जीवन में हमें लाना है तो परिवर्तन। और कौन सा परिवर्तन? भगवान के इच्छा अनुसार परिवर्तन। तो अब हम चेंज के विषय में ये स्लाइड दिखाकर विराम देने वाले हैं हमारे आज के प्रवचन को, और ये स्लाइड से फिर हम अगले रविवार को प्रारंभ करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि बदलाव लाने में कलयुग में विशेष रूप से क्या रोड़ा बीच में आता है, आलस्य। जो इतने सालों से मैं करता आ रहा हूं, क्यों मैं इतना कठिन परिश्रम कर बदलाव लाऊं मेरे अंदर? तो एक कोट आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे और उस पर हमको पूरे हफ्ते भर विचार करना है इस कोट के ऊपर। इसके ऊपर विचार करेंगे और फिर हम मिलेंगे अगले रविवार को फिर इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए। तो कोट इस प्रकार से है, Simply going to temple doesn't make you a devotee of Krishna any more than simply standing in a medical college makes you a doctor. केवल मैं मेडिकल कॉलेज में चार साल जाकर खड़ा रहा, मेरी डिग्री मिलेगी? लोगों ने चार साल रोज आकर खड़ा रहता था ये, बाहर वॉचमैन भी खड़ा रहता है, वो तो 10 साल से खड़ा है बेचारा। तो कोई कहे मैं 4 साल से इस्कॉन मंदिर जा रहा हूं, 4 साल से जा रहा हूं, 10 साल हो गए, 4 के 10 हो गए, 10 के 20 हो गए, 20 साल से इस्कॉन के मंदिर में जा रहा हूं, क्या केवल इस्कॉन के मंदिर में जाने से आप कृष्ण के भक्त बन जाओगे? वैसे ही जैसे कोई कहे कि मैं 20 साल से मेडिकल कॉलेज में जाकर हाजिरी लगा रहा हूं, तो क्या उसको डॉक्टर बना दिया जाएगा तरस खाकर? हाँ, 20 साल से आ रहा है तरस खाकर, अभी तो बना दो इसको डॉक्टर। So the point over here is simply coming to the temple physically, अपने शरीर को घर से उठाकर यहां पर फेंक देना और मान लेना कि बस अब तो वो नैया पार करेंगे। कई तो वो भी नहीं करते, बोलते हैं कि वो नैया मेरे घर तक लाएंगे। तो ये जो कोट है इसका अर्थ क्या है कि जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में जाकर उसको परिश्रम करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनने के लिए, हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए क्या करना होगा? परिश्रम। तो आवर्तन के लिए परिवर्तन, परिवर्तन के लिए परिश्रम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बार हमें वी हैव सम कंसर्न फॉर द सोसाइटी, यानी कुछ लगता है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, या मैं क्योंकि मैं प्रेम कर रहा हूँ ये सोसाइटी से जुड़ा हूँ इसीलिए, तो मैं इसीलिए फिर कुछ मेरा मत देता हूँ, क्योंकि उसके पीछे वो कंसर्न रहता है कि कुछ आगे कुछ चीज़ें अच्छी हो। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो आपने एक्सप्लेन किया, थोड़ा इलाबरेट कर सकते इस पर?
नहीं, हमने इस बात की चर्चा की थी कि मत तो देना है, हमारा दृष्टिकोण हमें प्रस्तुत करना है भक्तों के समुदाय में, बाहर प्रचार जो कर रहे हैं वो क्या है, दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे भक्तों के सामने चाहे अभक्तों के सामने, चाहे भक्तों के समाज में चाहे अभक्तों के समाज में, हमारा दृष्टिकोण हमें प्रस्तुत करना है गुरु साधु शास्त्र के आधार पर।
तो जब हम कॉम्पिटिटर देखते कोई, यानी कोई अलग डिवोटी है वो कुछ अलग मत दे रहा है, तो हमें कभी लगता है कि ये अगर इसका फॉलो होगा तो शायद से चीजें अच्छी नहीं होगी, और जो मेरा विचार है मैं ऐसा समझता हूँ कि वो गुरु शास्त्र साधु शास्त्र के अनुसार है ऐसा।
नहीं, तो उसमें हमें ये देखना है कि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार मेरा और उसके मत में कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। दोनों के गुरु साधु शास्त्र के मत के अनुसार ही होंगे वो दोनों, यह बोल रहे हैं ना, दो भक्त हैं, दोनों के मत गुरु साधु शास्त्र के आधार पर हैं, लेकिन एक का ज्यादा इफेक्टिव एक का कम इफेक्टिव, यह आप पूछ रहे हैं प्रश्न। हाँ, तो ये उदाहरण ना, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को समझाने की कोशिश किए, तो सोचो डायरेक्टली भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इफेक्ट नहीं हुआ। तो भगवान का ही उदाहरण है, भगवान ने क्या किया, ठीक है मेरा मत इफेक्ट नहीं कर रहा है, मैं लेकर चाहता हूं जिसके पास जिसका इफेक्ट करेगा, भीष्म पितामह। तो वहां पर हमको भगवान श्री कृष्ण के पदचिह्नों पर चलते हुए वो विनम्रता दिखानी है कि फाइनली हमको प्रभुपाद के मिशन के लिए क्या इफेक्टिव है वो देखना है। इसलिए महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, क्योंकि अर्जुन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे पूरे युद्ध में, इसलिए कि धर्म की स्थापना करने के लिए। हाँ, और बाकी सब ये मानते थे, वहां पर कोई किसी ने झगड़ा नहीं किया, भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव वो कोई झगड़ा नहीं किया, हमको क्यों नहीं सुने, हमारे रथ के सारथी क्यों नहीं बन रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो मैच्योरिटी थी कि धर्म की स्थापना के लिए यदि अर्जुन वो सबसे इन्फ्लुएंशियल है, सबसे इफेक्टिव है, तो हाँ अर्जुन को सबसे आगे रखो। तो भक्तों के समुदाय में भी हमको इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए कि यदि एक कल का आया हुआ भक्त गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपना मत प्रस्तुत करता है और वो इफेक्टिव है, तो हां उसके मत को सबसे आगे रखो। भक्ति में सक्सेस की व्याख्या भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल और उनके भक्तों की प्रसन्नता, यह है सक्सेस। नहीं, आपने प्रश्न पूछा था भक्ति में सक्सेस, भक्ति में सक्सेस पूछ रहे हैं ना आप। नहीं नहीं नहीं, अदर्स यहाँ पे अदर्स पूरा बाहर का जन समुदाय नहीं, यहाँ पे अदर्स मतलब अदर डिवोटीज, वो था मतलब। हाँ, यदि कोई डिवोटी को प्रमोशन मिला है और वो प्रमोशन उसके भक्ति के लिए लाभदायक है, जरूर, क्यों नहीं, जरूर उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। परंतु यदि कोई ऐसा सक्सेस है जो उसके भक्ति में अब बाधा आने वाला है, तो उसको आपको जाके उसको चौकन्ना करना चाहिए कि भाई ये तुम्हारी भक्ति में बाधा ला सकता है। एनीथिंग विच प्लीजेस कृष्णा एंड डिवोटीज, सौ बात की एक बात, एनीथिंग विच प्लीजेस कृष्णा एंड डिवोटीज शुड बी सेलिब्रेटेड। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की
जय। श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।